الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى في مقام آخر: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور بنیادی مقصد کیا تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے؟ کہ اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، زمین میں صرف میری عبادت ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. دو چیزیں ہیں انسان کے مقاصد میں سے. ایک اور جگہ فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ دنیا میں اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتے. آپ اگر مسجد سے باہر نکلیں، گھروں میں جائیں، اداروں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، دفتروں میں جائیں، جس شخص کے پاس تعلیم نہیں اسے ملامت کی جاتی ہے، جو بے روزگار ہے اسے ملامت کی جاتی ہے، اور جسے ترقی کا شوق نہیں وہ قابل ملامت سمجھا جاتا ہے، مگر جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے قابل ملامت سمجھا نہیں جاتا. ایسا کیوں ہے؟ عبادت گزار اور عبادت نہ کرنے والے لوگ، ان کے درمیان فرق کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت کا تعلق کس کی رضا سے ہے؟ اللہ کی رضا سے. اور ہم جن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں اس کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، دنیا سے. انسان کی فطرت ہے کہ اسے دنیا کی جو چیز جس کا اس کی ذاتی زندگی سے تعلق ہو، مادہ پرستی سے تعلق ہو، اس کی مادی زندگی سے تعلق ہو، وہ ضرورت فوراً سمجھ میں آتی ہے. آپ اگر بے روزگار ہوں گے تو روٹی نہیں کما سکیں گے، بھوک لگے گی تو پریشان ہوں گے، اس لیے بے روزگار آدمی کسی کو پسند نہیں ہے، دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے، گھر میں تانے ملتے ہیں اس کو. جس کے پاس تعلیم نہیں ہے قابل ملامت ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی ترقی نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی تو گیس بجلی اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا کی ترقی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گی. آپ کا ملک معاشی ترقی نہیں کر سکے گا، इंसान की दौड़ धूप जो है सिर्फ उस हद तक होती है जो चीजें उसके पेट की जरूरत को पूरी करें और इसकी शहवत को पूरा करें, इसके अलावा इससे आगे बढ़ता नहीं है इंसान। इसी को कामयाबी समझा जाता है। एक आदमी के पास दुनिया की हर चीज है, हर नेमत है, सवारी भी है, मकान भी है, कमाता भी अच्छा है, सब उसको समझते हैं बड़ा कामयाब आदमी है, क्योंकि सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। एक तरक्की याफ्ता शख्स होने के लिए जो चीजें दरकार थी, जो रिक्वायरमेंट होती है एक तरक्की याफ्ता कौम की या शख्स की, वो सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। नमाज पढ़े ना पढ़े ये इसका जाती मसला है, समझ में आ रही है बात की नहीं? लेकिन एक आदमी नमाजी है, इबादत गुजार है, उसकी ये जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो वो खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, दूसरे भी उसे देख देख के परेशान होते हैं, कहेंगे ऐसी नमाज का क्या फायदा है जिससे तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही, तनख्वाह तो उतनी की उतनी है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसे कामयाब नहीं समझा जाता, ना ही वो खुद अपने आप को कोई बहुत बड़ा कामयाब समझ रहा होता है, बल्कि पढ़ ही इसलिए रहा होता है कि कहीं रोजगार मिल जाए। अब तो समझ में आ रही होगी ये वाली बात, तो सबकी समझ में आई होगी। पढ़ी बहुत से लोग इसलिए रहे होते हैं कि सुना है मौलवी साहिबान से कि नमाज पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है। एक आदमी तहज्जुद की पाबंदी करता है और एक आदमी, बल्कि यूं देख लें ना, घर में देख लें, किसी वालदेन के दो बेटे हों, एक बेटा नमाजी है, इबादत गुजार है, तनख्वाह कम है, तनख्वाह कम है, दूसरा इबादत गुजार नहीं है, कमाता बहुत है, सारा घर चलाने वाला वही है, तो वालदेन को किससे मोहब्बत होगी? बोलो भाई, जो कमाने वाला है। दूसरे से नफरत अगर इस बुनियाद पर होती कि वो कमाने की कोशिश नहीं करता फिर तो ठीक है, कोशिश वो भी कर रहा है ये भी कर रहा है, उसकी इसकी किस्मत जाग उठी, उसकी नहीं उठी किस्मत बेचारे की। लेकिन फिर भी जो ज्यादा कमा के ला रहा है नेक भी वही होगा, बाखलाक भी वही है, अच्छा भी वही है, जन्नती भी वही है, जन्नतुल फिरदौस में जगह भी उसी को मिलेगी, वालदेन का फर्मा बरदार भी वही कहलाएगा। जो बेचारा गरीब ठहरा सुस्ती की वजह से नहीं, शरीयत में सुस्ती को पसंद नहीं किया है कि आप नेक होने की वजह से इतने सुस्त हैं कि उठा ही नहीं जाता बिस्तर से, मुलाजमत तलाश करने के लिए आपसे निकला ही नहीं जाता घर से, ये नेकी नहीं है। किस्मत किसी का साथ देती है किसी का साथ नहीं देती। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशा व यक़बिज़, किसी के लिए अल्लाह हाथ को उसका तंग कर देते हैं और किसी के लिए रोजी को शादा कर देते हैं। तो अब जो ज्यादा कमा रहा है वो नेक भी है, बा अखलाक भी है, सब रिश्तेदार उससे खुश भी हैं। नमाज के बारे में कहते हैं नमाज जाए माज़ अल्लाह भाड़ में, माजरत के साथ, नमाज का क्या करना है हमें, हमें इसकी नमाज से क्या फायदा। जो दूसरा है ना, जो गरीब गुरबा पान गुटके तक के पैसे दूसरों से लेता है बेचारा, ऐसे नमाजी हैं हमारे इल्म में, पक्के नमाजी हैं। एक भाई सूद कमा रहा है, हराम कमा रहा है, बैंक में अच्छी तनख्वाह है उसकी, वालदेन जो नमाजी हैं उस भाई बेटे से मोहब्बत करते हैं जो कमा के खिला रहा है, ये बेचारा नमाजी, इसका कारोबार ठप हो गया, अब सिर्फ नमाज रह गई है इसके पास, तो मुझे खुद बता रहा कि पान गुटके के पैसे भी मेरे पास नहीं होते, उसी से मुझे पता चला कि नमाजी भी गुटका खाते हैं, वरना मेरा ख्याल ये था कि ये बेनमाजियों का काम है। कह रहे पान गुटके सिगरेट के पैसे नहीं होते, तो घर में हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। तबलीग वाले कहते हैं ना कि दो रकत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से मांगो, तो एक आदमी बेचारा दो रकत सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से मांग रहा है कि अल्लाह मेरे माँ बाप को ठीक कर दे, पैसे नहीं है जेब में इलाज के लिए, दूसरा नमाज नहीं पढ़ता लाके पैसे पकड़ा देता है, तो माँ बाप कहते हैं भाई तेरी नमाज हमारे किस काम की, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जो मिसालों से समझा रहा हूं कि इबादत की हमारे मुआशरे में कोई अहमियत नहीं है, क्यों नहीं है इसकी भी वजह बता रहा हूं, इसलिए नहीं है कि इबादत से खुश कौन होता है, अल्लाह, हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें जब मिलेगा जब उसकी तनख्वाह अच्छी होगी, समझ रहे बात को, हमें जब मिलेगा उसकी सेहत अच्छी होगी, हमें जब मिलेगा जब वो हमारी खिदमत करेगा। इसलिए इंसान जितने दुनिया में कवानीन बनाते हैं वो इंसानों के मफाद को देख के बनाते हैं, उसमें अल्लाह की रिजा को और अल्लाह की चाहत को मलहूज नहीं रखा जाता। यही फर्क है कि इस्लामी हुकूमत में और एक गैर इस्लामी हुकूमत में। इस्लामी हुकूमत वो होती है जिसमें इंसानों की हुकूमत ही नहीं होती, बल्कि किसकी हुकूमत होती है? अल्लाह की। इंसान कानून साजी करता ही नहीं है, बल्कि कानून किसके तरफ से बने हुए होते हैं? अल्लाह की तरफ से। इंसान उसको नाफिज करता है, और इंसानों के बने हुए कवानीन जिसमें अल्लाह की बात को, अल्लाह की रजा को सामने ना रखा जाए तो वो फिर ऐसे ही बनते हैं। उसमें जिना की भी इजाजत होती है, क्योंकि जिना करने से वो कहते हैं कि किसी का कोई नुकसान नहीं है, लड़की राजी लड़का राजी, तो ये अगर बदकारी कर रहे हैं, मुंह काला कर रहे हैं, तो किसी मौलवी साहब के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है उनको? इसलिए दुनिया के जिन मुल्क जो सेकुलर स्टेट्स हैं, सेकुलर रियासतें हैं, उनमें जिना की इजाजत है, जबरदस्ती ना हो, क्योंकि जबरदस्ती में नुकसान है सामने वाले का। जबरदस्ती अलाउ नहीं, अपनी मर्जी से जो चाहे करो, लेकिन ये ऐसी चीज है जिससे जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह कहता है जमीन मेरी है, मैंने इंसानों को बनाया है। इन अल्लाह ला यामुर बिल फहशा, मैं बेहयाई बेहूदगी को कभी पसंद नहीं करता, नहीं पसंद करता। तो इंसान जब कवानीन बनाते हैं इंसानों को सामने रख के, जिसमें इंसान का मफाद होता है, उसमें अल्लाह की रजा, इस कायनात को बनाने वाला, उसकी रजा मलहूज नहीं होती। तो यही फर्क है मेरे भाई इस्लाम में, मुस्लिम में और नॉन मुस्लिम में, कि मुस्लिम उस चीज को अच्छा समझता है जिसमें अल्लाह की रजा हो, और जिस बात में अल्लाह की रजा नहीं है, जिस चीज से अल्लाह खुश नहीं हो रहा, सारी दुनिया खुश हो जाए, उसे इसकी परवाह नहीं होती। समझ में आ रही है बात? अब हम भी मुस्लिम कहलाते हैं अपने आप को, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, मैयार क्या है अच्छे और बुरे का, देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। अगर आप साहिब औलाद हैं, आपका एक बेटा नमाजी है गरीब है, दूसरा बेनमाजी है मालदार है, तो आप अगर वाकईतन मुस्लिम हैं तो अच्छे और बुरे का जो मैयार होना चाहिए, जिसको आजकल क्राइटेरिया कहते हैं, मैयार समझ में नहीं आएगा लोगों के, मुश्किल लफ्ज हो जाता है, गाड़ी गाड़ी उर्दू हो जाती है, तो आजकल उसमें अच्छा कौन होना चाहिए? आपको मोहब्बत किससे होनी चाहिए? बोलो भाई, जो बेटा नमाजी है अगरचे कम कमाता है, और आपकी आंखें उसी को देख के ठंडी होनी चाहिए, जो कमा कमा के ला रहा है, खिला रहा है, ठीक है, उसकी अच्छी बात है, आपकी खिदमत कर रहा है, लेकिन उसे बोलें कि बेटा पहले किसका हक? अल्लाह का हक है, उसका हक पहले अदा करो। अल्लाह ताला ने नेक लोगों की कुरान मजीद में जो सिफात बयान की हैं, उन सिफात में एक सिफत ये भी, इससे इंसान के नेक होने का पता चलता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जैसे बाज मरतबा बुखार हकीकत में नहीं होता, माथा धूप से गर्म होता है, तो आप हाथ रखें धोखा हो जाएगा बुखार का, हकीकत में बुखार नहीं होता। हकीकी बुखार का पता चलेगा थर्मामीटर से, थर्मामीटर गड़बड़ नहीं करता, लगाएंगे निकालेंगे वो सही सही फिगर बताएगा कितने फॉरेनहाइट है, बुखार है या नहीं है। तो फरमाया बाज दफा किसी की जाहिरी वजा कता से धोखा हो जाता है उसके दीनदार होने का, पगड़ी बांधी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, कपड़े बड़े अच्छे से जैसे मैंने पहने हुए हैं अभी आपके सामने सफेद कपड़े, ठीक है ना, और आप लोगों में बहुत सुने अच्छे अच्छे, जुम्मे का दिन है, सभी अच्छे अच्छे कपड़े ही पहन के आए हुए हैं माशाल्लाह। तो गेटअप हुलिया नमाज, इसको देख के लगता है कि क्या है, दीनदार। तो फरमाते थे कि बाज दफा जाहिरी सूरत और हुलिया होता है, हकीकत में दीनदारी नहीं होती, तो उसके लिए थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर उसकी जबान पे रख के देखें, निकालें, अगर वो थर्मामीटर बता देगा कि दीनदारी कितने डिग्री फॉरेनहाइट है, वो थर्मामीटर क्या है? हर चीज के थर्मामीटर उसी हिसाब से होते हैं ना। बुखार को नापने का पैमाना अलग है, टमाटर तोलने का पैमाना। अब टमाटर के लिए तो आप थर्मामीटर टमाटर में नहीं घुसते जिससे पता चले कितने किलो है, किलो का पैमाना क्या ख्याल है भाई, अलग है। हर चीज को नापने के आलात अलग से होते। कपड़े को नापने के लिए पैमाइश, इंच टेप। तो गैस, टायर में हवा कितनी है? आपके गाड़ी के टायर में हवा कितनी है वो उसके लिए अलग पैमाना है। तो इसी तरह वो भी थर्मामीटर ही है, उसी का थर्मामीटर ही कहलाएगा। तो फरमाते थे दीनदारी को नापने के भी कुछ थर्मामीटर हैं, वो रखो जबान के नीचे, पता चल जाएगा ये कितने पानी में, दीन है अंदर दिल में है या नहीं है। उसमें थर्मामीटर में चंद चीजें, एक चीज फरमाते थे कि जब इसको कोई दुनिया का गम पहुंचता है, दुनिया का नुकसान होता है, तो इसे तकलीफ कितनी होती है, बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी अलामत है ये दीनदार नहीं है, इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझता ही नहीं, सभी कुछ इसी को समझता है दुनिया को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जो आदमी दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, उसे पता है ये ट्रेन का सफर है, आगे स्टेशन पे उतर जाऊंगा, तो अगर उसे थोड़ा बहुत गम पहुंच जाए, बैठने को सीट ना मिले, रात को लेटने के लिए बर्थ ना मिले, तो क्या कहता है, रोता रहता है बैठ के, ब्रेन हैमरेज से मर जाता है क्या? बर्दाश्त करता है, थोड़ा सा मुंह मारी करेगा, उसके बाद बैठ जाएगा, चलो भाई आगे स्टेशन पे उतर जाएंगे। बल्कि ताना देगा, आगे जाके देख मैं तेरा करता क्या हूं, पेशावर आने तो दे, जो आपकी सीट पे जो बैठ गया ना उसे कहता है अभी स्टेशन पे पहुंचने दे, फिर देख। तो दीनदार का भी यही होता है कि रहाइश को अच्छा मकान मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला लटक के सफर कर लेंगे भाई, आज फलां पाइप के नीचे, सही है, हीरोइनचो को देखें कैसे मजे जिंदगी गुजारते हैं, कभी किसी पाइप के नीचे घुसे हुए खराटे लेके सो रहे होंगे, क्योंकि वो तो दुनिया को भूल ही जाते हैं ना, उनका तो दिमागी तवाजुन खराब हो गया। दीनदार आदमी का दिमागी तवाजुन बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है, उसका तो बिल्कुल खराब हो गया इसलिए सुकून में है, इसका बिल्कुल ठीक हो गया इसलिए सुकून में है। ये कहता है जिंदगी है यही सफर की, सफर ही है ये, खत्म होने वाली है, यहां की इज्जत आरजी खत्म होने वाली, यहां अगर आपको सदरे ममलकत भी बना दिया जाए, जाना आपने 6 फुट की कब्र में ही है। यहां अगर आपका बिजनेस चल पड़ा और कामयाब हो गया तो भी आपसे छीन लिया जाएगा, मौत की घाट उतार दिया जाएगा। वो इबरत हासिल करता है एक्सीडेंट देख के, मौतें देख के, हार्ट अटैक देख के, ब्रेन हैमरेज देख के, अस्पतालों में मरीजों की हालत देख के और एक्सीडेंटल अमवात देख के, वो समझ जाता है कि एक वक्त मुझे भी मरना है और ये भी नहीं पता कि कब जाना है, ये भी नहीं पता। तो इसलिए वो सुकून में रहा, उसे पता है कि आखिरत अगर सही है, आखिरत, तो इन सब चीजों का नेमुल बदल मिल जाएगा। जितने गम यहां पहुंचे उतनी ही आखिरत अच्छी होगी अगर सब्र कर लिया। गम अल्लाह से मांगना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको आफियत की जिंदगी दे, सुकून की जिंदगी दे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी को कोई गम दुख पहुंच जाए, तो अल्लाह ने कुरान मजीद में थर्मामीटर बताया कि वो क्या करते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान में जहां भी कालू का लफ्ज है कि वो ये कहते हैं, तो उससे मुराद सिर्फ जबान से कहना नहीं होता। क्या मतलब? उनकी जबान उनके दिल के जज्बात की अक्कासी करती है, उनके दिल के जज्बात ये होते हैं। वो क्या जज्बात होते हैं? इन्ना लिल्लाहि, कि हम अल्लाह ही के गुलाम हैं। जो बादशाह है उसे हक है कि गुलाम के साथ जैसा चाहे तसर्रुफ करे, हमारा अपना तो कुछ नहीं है। वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। जाएंगे तो सारी चीजें वापस लौटा देगा। औलाद छीन ली अल्लाह ने किसी की बचपन में, और सेहत नहीं मिली किसी को, माजूर हो गया खुदा ना ख्वास्ता, नाबीना हो गया अल्लाह ना करे। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ तलईतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अवस्तुहु मिन्हुमल जन्ना, जब मैं अपने किसी महबूब बंदे से आंखों की नेमत छीन लूं, नाबीना कर दूं, उसकी दो महबूब नेमतों को छीन लूं। आंखों को महबूब से ताबीर किया इसलिए कि आंख की नेमत इंसान को जितनी महबूब है इतनी कोई और नेमत महबूब नहीं होती। चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि मैं कितनी देर बगैर देखे रह सकता हूं। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनसे दुनिया में बिनाई, जो पैदाइशी नाबीना है उसके लिए इतनी बड़ी आजमाइश नहीं। जिसको एक दफा आंख की नेमत मिली उसके बाद उसकी बिनाई अल्लाह ने छीन ली किसी हादसे के जरिए या किसी और बीमारी के जरिए, तो हदीस में आता है अल्लाह ताला फरमाते हैं फासाबारा, उसने सबर किया। देखो गैर मुस्लिम सबर नहीं कर सकता। गैर मुस्लिम कहेगा मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, उसे तो आखिरत का यकीन नहीं है, कहेगा मैं पीछे रह गया सबसे। इंसान जितनी लज्जतें दुनिया में उठाता है उनमें 50-60% लज्जतों का ताल्लुक आंख से है। दुनिया अंधेरी हो गई लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जिसने सबर किया अवज़तुहु मिनहुमल जन्ना, मैं इसको इन दोनों आंखों के बदले में जन्नत दूंगा। इस सबर का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान के लिए कितना बेहतरीन ऑप्शन है। अब जिसको अल्लाह पर यकीन होगा वो इस गम में भी सबर करेगा। एक तबई तकलीफ होती है जो हर एक को होती है वक्ती, वो तो एक लाजमी हिस्सा है, वो नेक लोगों को भी होती है बुरों को भी होती है। एक है वावेला करना, जजा व फजा करना, बेसब्री का मुजाहरा करना और अल्लाह से शिकायतें शुरू कर देना, खुदकुशी के ख्याल दिल में आना, ये चीजें बेसब्री हैं। तो दीनदारी का जो पहला थर्मामीटर है वो क्या है कि इसका माल छिनता है, इसको नुकसान होता है, इसे इसकी महबूब चीज नहीं मिलती। आजकल कई लोग लड़के फोन करते हैं फला जगह रिश्ते का पैगाम भेजा था, इश्क हुआ हुआ है, लेकिन वो मान नहीं रहे, क्या करूं पागल हो गया हूं। तो मैं उनसे कहता हूं मैं क्या करूं भाई, ये हो रहा है बहुत। फेसबुक पे बैठे होते हैं लड़के, फेसबुक पे किसी लड़की से दोस्ती हो गई, मां बाप ने ला के रखा हुआ है फेसबुक, आईडी बनाओ बेटा चैटिंग करो। मां बाप इतने घुन्ने हैं कि अल्लाह की पना, अपनी औलाद पे भी उनको तरस नहीं आता। ये जो उम्र है 13 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र तक, वालदैन के लिए खुसूसी बात कर रहा हूं कि इस उम्र में किसी नौजवान को जब इश्क होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। समझ में आ रही है बात, टीन एजेस वाली जो उम्र है, वैसे तो ये टीन एजेस 19 साल तक की होती है लेकिन आजकल के लिहाज से 23-24-25 भी इसमें ऐड कर लें आप, ये बहुत खतरनाक उम्र होती है। इसमें किसी लड़की से दोस्ती कर लेना और इस तरह की दोस्तियां बर्बाद कर देती हैं इंसान को। और इन दोस्तियों का सबसे बड़ा जरिया, दो चीजें हैं सबसे बड़ा जरिया, एक हो एजुकेशन। ब्रॉड माइंडेड बनने के लिए लड़कियों के स्कूल में लड़के को दाखिल कर दिया, लड़कियां लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं वहां पे, को एजुकेशन, ताकि हमारा बच्चा मौलवियों की तरह तंग जहन ना हो, नीयत यही होती है। नहीं आ रही बात समझ में, अब खराब खराब बातें शुरू, अब बयान में अब गलत गलत बातें शुरू, ठीक है। मकसद क्या होता है भाई, को एजुकेशन में बच्चा पढ़ेगा, बचपन से इसी माहौल में पलेगा तो मौलवियों की तरह जो है ना उसका दिमाग तंग नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी, लड़के घर में आके बताते हैं मेरी फला फ्रेंड है, मेरी माँ बाप बहुत खुश होते हैं, माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज बन के दिखाएगा दुनिया में। समझ में आ रही है बात, तो भाई जो तो तजर्बे आ रहे हैं ना सामने को एजुकेशन के, बहुत खतरनाक आ रहे हैं सामने, बहुत खतरनाक आ रहे हैं। औलाद मां बाप के हाथों से निकल रही है, क्या करना है ऐसी तालीम का कि आपकी औलाद आपकी ना रहे। मैं कहता हूं उससे वो जाहिल रेड़ी लगाने वाला, आम खरबूजे बेचने वाला, वो जाहिल अच्छा है जो अपने मां बाप का खिदमत गुजार है, मौत तक वालदेन के साथ वफा करता है, और वो तालीम याफ्ता जो अपने मां बाप ही को बाप ना माने, वो बेटी जो अपने बाप से पूछे बगैर शादी कर रही है, बाप को जो है वो एतमाद में लेना भी जरूरी नहीं समझती, मेरा फैसला है, मेरी जिंदगी का फैसला है, मैंने अपना साथी खुद मुंतखब करना है, आप कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले, ये हो रहा है आजकल। क्या फायदा ऐसे लड़की को इस तरह का डॉक्टर बनाने का, पहले अपना तो बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर ना बनाए इंजीनियर ना बनाए, ऐसे स्कूल भी हैं जिनका माहौल अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी स्कूल वजूद में आ गए हैं। तो ऐसे स्कूलों को देखें, गौर करें। नखला है, आपको मालूम है, इस तरह सुफा स्कूल है गुलशन इकबाल में, दी मेंटोर है यहां आपके, क्या नाम है इस जगह का, कलंदरी चौक से थोड़ा आगे सखी हसन पे, तो इनकी तालीम का मयार भी बहुत ऊंचा है। इस तरह के और चंद एक स्कूल हैं, यकीन मॉडल स्कूल था उसका, पता नहीं किसी और नाम से काम कर रहा है वो, पहले था। तो ये इस तरह के जो स्कूल हैं उनमें आप तालीम का लेवल भी बहुत ऊंचा है, लेकिन माहौल दीनी माहौल मुयसर है, तो कोशिश किया करें यहां दाखिल कर लें। लेकिन इनका यूनिफॉर्म में बच्चे के सर पर टोपी होती है, इससे वालदैन को तकलीफ होती है। भाई टोपी का तालीम से क्या ताल्लुक, टोपी पहना के क्या वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएगा? वजीर आजम के लिए क्या ये शर्त है कि उसके सर पे टोपी ना हो? मुल्क में कोई ऐसा कानून तो नहीं है ना? या मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो आपको क्या डिग्री नहीं मिलेगी अगर आपके सर पे टोपी है? भाई बोलो भाई, अभी तक तो ऐसा कोई कानून नहीं है ना। हमने बड़े बड़े डॉक्टर टोपियों वाले देखे हैं, टोपियां कराने वाले तो बहुत ही हैं, सारे ही हैं, दूसरों को टोपियां कराने वाले डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर भी बहुत देखे जिनके सर पे टोपी होती है, दीनी माहौल में पढ़ के आगे गए होते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवाएं उनका जहां माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्कूल वजूद में आ रहे हैं। और मैं कहता हूं अगर किसी शख्स ने स्कूल खोलना है, किसी के पास अल्लाह ने सरमाया दिया है, तो ऐसे स्कूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि दीनी मदारिस तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मुल्क में मौजूद है, इस वक्त दीनी मदारिस के बजाय ऐसे स्कूलों की ज्यादा जरूरत है कि जहां तालीम दुनियावी हो लेकिन माहौल क्या हो, इस्लामी हो। मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत है, इन्हीं की हिफाजत की दुआ करें। हर जगह डेढ़ इंच का मदरसा बन जाता है कोई थोड़े दिन में उठा के। बहुत से मदरसे वाले, सबकी बात नहीं कर रहा भाई, मदारिस तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हम भी मदरसों ही से फारिग हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, बाज लोग बेरोजगार होते हैं, बाज लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, कोई काम धंधा नहीं होता तो चार ईंटें खड़ी करके और दो चार यतीम बच्चे ला के रख देते हैं उसमें, उसके बाद फिर उनका धंधा शुरू, बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़पति बन गए हैं, उन चार यतीम बच्चों के नाम पे चंदा खा लें सारी दुनिया की ले लेके, और इधर अपना बिजनेस चल रहा है। नहीं आ रही बात? ऐसे भी बेरोजगार लोग बहुत हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं मदरसों के नाम पे। हमारे नेक लोग क्या करते हैं, जाते हैं देखते हैं कि ये चंदा मांगने वाला है कि सर पे चूंकि टोपी भी है और एक अदद दाढ़ी भी है तो ये झूठ नहीं बोल सकता, लिहाजा फौरन 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। तो ये बहुत हो रहा है मदरसों में, तो इसलिए जब किसी मदरसे में चंदा देना चाहें तो जरा तहकीक कर लिया करें कि जितना दे रहा हूं इतना इसी पे लग रहा है, या मोहतमिम साहब ही खा पी के दाएं बाएं कर रहे हैं। सब ऐसे नहीं है लेकिन ऐसे लोग भी हैं। तो इल्म में कोई मजबूत आदमी हो जिसकी निगरानी में मदरसा चल रहा हो, कोई बड़े उलमा में से कोई हो, तकवा पर एतमाद हो उनके, तो ऐसे मदरसों के साथ ताउन किया करें, वरना यह भी कारोबार का एक बहुत बड़ा जरिया है। लोग यहां से बैरून मुल्क जा जाके पैसे लेकर आते हैं, तस्वीरें खींच के ले जाते हैं किसी मदरसे की, ला ला के पैसे वहां से अरबों को बेवकूफ बना बना के पैसे लाते हैं। ऐसे भी हमने एक जाली तस्वीर देखी, गली महल्ले के बच्चों को जमा किया, टोपियां पहना के बिठाया, सही बुखारी रख दी उनके सामने, खुद भी बुखारी लेके बैठ गए, बोला जरा फोटो खींचो, फोटो हो गए, उसके बाद चलो भाई निकलो पतली गली से, यहां से भागो सारे अपने अपने काम में लगो। फोटो ले जाके अरबों को दिखाई, हमारा मदरसा है जहां सही है बुखारी पढ़ाई जा रही। अरब लोग तो सखी होते ही हैं। शेख साहब ने जेब से रियाल के पूरी गड्डी निकाली, पकड़ाई, समझ आ रही है बात? तो ये आए इनका अपना बिजनेस चल रहा है, बहुत पैसे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मदारिस भी हैं, तो बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जिसने अपने बच्चे को आलिम बनाना है उन बड़े मदरसों में दाखिल करें अपने बच्चे को, लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरत ऐसे स्कूलों की है कि जिन स्कूलों में तालीम यही हो, असरी उलूम जो आजकल आम स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, मैयार अच्छा हो मगर माहौल क्या हो। ऐसे दीनी स्कूल अगर खुले भी हैं तो उनका तालीमी मैयार अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? तो बच्चा एक तो टोपी पहन के जा रहा है, ऊपर से اسے تعلیم بھی نہیں مل رہی، ماں باپ اس کی ٹوپی بڑی مشکل سے برداشت کر رہے ہیں کہ دیکھنے میں یہ مولوی مولوی سا نظر آ رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا نہ بن جائے، ان کو ڈر ہے کہ کچھ عجیب سی چیز نہ بن جائے، یہ صحیح ہے نا، ڈر ہے ان کو، تانے بھی مل رہے ہیں، یہ بھی ڈر ہے کہ پتہ نہیں شادی ہوگی نہیں ہوگی، ایسا نہ ہو رشتہ لینے بھی ٹوپی پہن کے پہنچ جائے، تو یہ سارے خطرات مستقبل میں منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹوپی سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، اس لیے زیادہ نہ گھبرائے کریں ٹوپی، تو ٹوپی نہ بھی پہنے، کوئی ٹوپی فرض واجب نہیں ہے۔ جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کو ایجوکیشن کا ماحول ہے، بڑی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں، ان کو فیمیل ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں، وہ لڑکے ان کے بارے میں کیا کیا تبصرہ کرتے ہیں اپنی استانیوں کے بارے میں۔ ماں باپ ہوتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، وہ کیا ہوتے ہیں بےچارے، گھننے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے وہاں جا کے۔ اور آج کل پھر اور بھی ماحول خراب ہو رہا ہے، تو جو جن گھروں میں اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں ہے، وہ بچے موبائلوں میں بےہودہ فحش تصاویر لا کے اسکول میں اپنے بچوں کو دوسرے دوستوں کو دکھاتے ہیں، وہاں سے بچہ بگڑتا ہے۔ ایک صاحب اپنے بچے پر بہت محنت کر رہے تھے کہ میں اس کو دیندار بناؤں گا، نیک بناؤں گا، بڑی اچھی تربیت کر رہے تھے اس کو، اچھی اچھی باتیں۔ ایک دن کیا دیکھا کہ جیب سے اس کی فحش تصاویریں، وہ رو پڑے، باپ رو رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو کتنی تربیت کر رہا ہوں اور یہ کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسکول میں اس کو دوسرے بچوں نے یہ چیزیں دی۔ تو تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی، تعلیم تو ضروری ہے، ماحول کی علماء مخالفت کرتے ہیں کہ جو ماحول اسکولوں میں دیا جا رہا ہے، یہ ماحول آپ کی اولاد کو بے دین بھی بنائے گا، مرتد بھی بنائے گا، اور یہ ماحول آپ کی اولاد کو آپ کا باغی بھی بنائے گا۔ اگر آپ کو یہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چلو اللہ کا باغی بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم اپنا باغی تو نہ بناؤ نا بھائی، آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں اپنا فائدہ بھی تو ملحوظ رکھیں، آپ کا بھی باغی بن جائے گا اور بن رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ 100% ہر جگہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، انہی اسکولوں میں پڑھنے والے بہت سے باصلاحیت لوگ بھی ہیں، والدین کے احترام کرنے والے، رشتے داری کو جوڑنے والے بھی ہیں، لیکن حکم اکثریت کا ہوتا ہے، اکثر کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں اولاد کو بگاڑ رہی ہیں، ایک کو ایجوکیشن، دوسرا گھر میں والدین نے فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے دی ہوئی ہوتی ہے ان کو، یا اجازت دی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے کیسز آ رہے ہیں بہت کہ اس نوجوان کا فیس بک پہ کسی لڑکی سے دوستی ہو گئی، معاشقہ ہو گیا، عشق معاشقہ شروع، اب دماغی توازن خراب ہو رہا ہے، شادی کا تو تصور نہیں ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ والدین کہے چلو اب ٹانکا لگی گیا ہے، آکڑا ہو ہی گیا ہے، آنکھ مٹکا ہو گیا ہے، مختلف نام ہے، یہ سب ہو گیا تو اب شادی کرا دو اس کی تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے۔ تو شادی کا نام آتے ہی 3 فٹ اچھل جاتے ہیں ماں باپ۔ اچھلتے کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ ساری زندگی بھوکے رہے ہیں، کبھی اللہ نے ہمیں کھانے کو روٹی نہیں دی، ایک بہو گھر میں آئے گی تو وہ بھی قحط سے ہلاک ہو جائے گی، ناشکری، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہو جو بیٹی بن کے گھر میں آتی ہے، اس کو کھلانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دنیا کی غریب ترین قوم ہیں، ہمیں اللہ نے آج تک کبھی کھانے کو کچھ بھی، بولو بھائی، نہیں دیا۔ یہ دماغ کے جذبات ہوتے ہیں بھائی، وہ تمہاری اولاد ہے تو اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اس کے فائدے کے لیے اس کا نکاح بھی کرا دو۔ انکہو لایاما منکم، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں جو بے اولاد ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جہاں تمہیں کھلاتا رہا ہے، خود ساری زندگی کباب پراٹھے کھاتے رہے ہو اور جو ہے نا وہ جوان ہو گئے اتنے، تو اللہ تمہیں بھی، تمہاری اولاد کو اور آنے والی اس کی بیوی کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا دے گا، رزق میں برکت دے دے گا۔ لیکن ہوس کا دور ہے، ہوس کا، ہر آدمی کہتا ہے میری دولت صرف کس کی ہے، میری۔ وہ کمپیوٹر پہ تو پیسہ خرچ کرے گا بیٹے کے لیے، چاہے اس فوش فلمیں دیکھے اس پہ لڑکیوں سے دوستیاں کرے، لیکن اس کی جو حلال ریکوائرمنٹ ہے، جائز ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی فطرت اور جوانی کا تقاضا ہے کہ میرے نکاح میں بیوی ہونی چاہیے، اس پہ گلا گھونٹ دے گا، اس کا بولے گا یہ آئندہ ایسی بات کی تو جان سے گولی مار دوں گا میں، کیونکہ اس میں وہ حلال ہے نا، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس میں آپ کا اپنا فائدہ بھی، آپ اپنے بیٹے کی شادی کرائیں گے، آپ کو بھی اس سے پوتے نواسے ملیں گے، اولاد آپ کی بھی ہوگی، وہ آپ کی بھی تو اولاد ہے۔ اولاد کی بات آتا ہی پھر وہ کہ اولاد हम तो चाहते हैं कि जितनी है उसको भी बम से उड़ा दें, ये बोझ बनी हुई है। तो आप कह रहे हैं मौली साहब मजीद, तो याद रखो ये बेटे और पोते नेमत ना होती तो कुरान इसको नेमत के तौर पे बयान ना करता। फरमाया हुवल्लज़ी जअला लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, उसने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई, और फरमाया वजअला लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदता, उन बीवियों से तुम्हें बेटे भी देता है और तुम्हें पोते भी देता है उनसे। तो पता चला अल्लाह पोतों को भी बेटों ही की फहरिस्त में बोलो भाई दाखिल कर रहे हैं। अपने बेटे की जल्दी शादी करा देंगे, आपको फायदा यह होगा कि एक तो आपका बेटा गुनाहों से बच जाएगा, नंबर दो आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी, अल्लाह ने वादा किया है, नंबर तीन आप बहुत जल्दी दादा बन जाएंगे। महल्ले के बदमाशों को क्या कहते हैं? दादा, इलाके का दादा है ये। क्यों कहते हैं? पोता क्यों नहीं कह देते? होता है कि दादा क्या होता है, दादा दादा होता है, बाप से भी बड़ा मकाम है दादा का। घर में जब भी इख्तलाफ होगा तो वो क्या कहेगा, घर का दादा, घर का दादा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? घर का दादा कौन है? मैं हूं। बने क्यों कर जो हो सब काम उल्टा, हर हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा, हर चीज उलट चल रही है ना, जो नेमत की चीज थी उसको अजाब बना दिया जाए। और एक बात याद रखें, लोग कहते हैं ना कि वालदेन औलाद को पालते हैं, ये बात गलत है। औलाद वालदेन को पालती है हकीकत में। वालदेन का जो रिश्ता आपस में जुड़ता है और उनकी जो टेंशनें खत्म होती हैं वो औलाद के बाद ही होती हैं। जिन मियां बीवी के औलाद नहीं होती ना, लड़ते रहते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे को देख देख के बेजार आ जाते हैं। जब औलाद हो जाती है तो वो फिर उस औलाद के लिए आपस में रहते हैं, उसी से उनकी मोहब्बतें। और दादा बनने में कुछ फवायद ऐसे हैं जो बाप बनने में नहीं है। दादा बनने में आप अपने पोतों की सारी दिलचस्पियों में दिलचस्पी तो भरपूर लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते आप। जिम्मेदारी किसकी है? बाप की। ये एक ऐसी फजीलत है दादा में जो बाप में नहीं। दादा की आंखें जितनी अपने पोतों को देख के ठंडी होती हैं, यहां तो दादा लोग दो चार ही बैठे होंगे कि शादियां इतनी देर से होती हैं, दादा बनने से पहले मर जाते हैं। तो जो कोई दादा है उससे पूछें कि दादा की आंखें अपने पोतियों नवासियों और पोतों को देख के जितनी खुश होती हैं, इतनी किसी चीज से खुश नहीं होती। और बच्चे अपनी दादियों और नानियों से जितने अटैच होते हैं, अपने वालदेन से भी नहीं होते इतने। और इसमें एक फायदा इजाफी क्या है कि दादा अपनी पोते की जिम्मेदारियों को नहीं उठाता, वो जिम्मेदारियां किस पे हैं? बाप में। तो मजे ही मजे हुए कि नहीं हुए? जैसे दादा ने पोते को गोद में उठाया, खेल रहा है बच्चा भी, खेल रहा है दादा से, कहानियां सुन रहा है। किसी शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा है अपने घर के बुजुर्गों के बारे में, दादा दादी नाना नानी के बारे में। लोग चाहते हैं ना कि ये मर जाएं जल्दी से जान छूटे। तो शायर ने बड़ा प्यारा शेर कहा है कि अपने आंगन का बूढ़ा शजर, अपने आंगन का, वो क्या शेर है पूरा शेर, मुझे शेर व शायरी में दिलचस्पी नहीं है ना ज्यादा। आंधियों से, हां याद आ गया, आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर भी अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। समझ आ रही है बात? तो बूढ़े लोग, हमें याद है हमारी दादी से हमने कितनी कहानियां सुनी हैं। हम अपने वालदेन से इतने अटैच नहीं थे जितने अपनी दादी से थे। नानी अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, उनकी 90 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्र हो गई है, अल्लाह उनको मजीद हयात दे। बातें उनकी वही हैं, वही जो छोड़ते हैं नानियां, उनके इसमें भी बड़ा मजा है। और ये जो नई नस्ल आ रही है ना, ये जब दादे दादी बनेगी तो मुझे लगता है कि ये दादा दादी बन के भी फेसबुक में दिलचस्पी लेगी। ये जो ये हिसाब किताब चल रहा है ना, इसी किस्म की होगी। तो अपने आंगन का बूढ़ा, आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर भी अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। घर की रौनक खत्म हो जाती है। तो मैं कह रहा था दादा दादी ने बच्चे को गोद में लिया, जैसे ही पेशाब करता है बच्चा तो फौरन पकड़ा देते हैं बच्चे की मां को या बाप को। क्या मतलब? धुलाई तुम्हारे जिम्मे है, हमारे जिम्मे नहीं है। तो ये फायदे हैं मेरे भाई औलाद को, ये तो वो सारे इंतजाम कर देते हैं उसके लिए बिगड़ने के, और सुधरने का एक भी इंतजाम नहीं किया हुआ। तो घर में कंप्यूटर बच्चों को लेके दें, अगर इंटरनेट लगाएं आप, उसकी निगरानी बहुत जरूरी है। वेबकैम भी लगा सकते हैं आप उसके ऊपर, बच्चे को बता दें ये कैमरा लगा हुआ है। वैसे तो अल्लाह ने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं फरिश्तों के, मगर वो तो समझ में आते नहीं है ना, तो चलो इंसान इंसान से तो कम से कम डर जाता है। वो नहीं तो उसकी हिस्ट्री चेक करते रहें, उसको बताते रहें। एक साहब के मैं घर गए इंटरनेट पर, जब बैठा तो उन्होंने सामने अपने वो अपने बेटे को इंटरनेट लेके दिया हुआ था, तो उस पर एक लगाया हुआ बड़ा बड़ा एक उनवान कि खबरदार अल्लाह देख रहा है। ये भी थोड़ा सा एक तकवे की बात है कि अपने बच्चे को बुराई से बचाने के लिए उन्होंने कुछ तो इंतजाम किया। तो मैं ये नहीं कहता इन जदीद चीजों से अपनी औलाद को रोकें, क्योंकि ये रोकना मुमकिन नहीं है और नुकसानदेह भी है। जब तक ये जदीद चीजों पर दस्तरस नहीं होगी, मुसलमान कौम आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अगर आप सारी चीजें छोड़ छाड़ के, इंटरनेट भी बंद करके, कंप्यूटर भी घर से निकाल के, सारी चीजें बैठ के मस्जिद में एतकाफ करके बैठ जाएं आप, तो मेरे भाई फिर जो मुसलमानों पर जो अभी आफतें आ रही हैं ना दुनिया में, मुसलमानों को इनका मुकाबला करने के लिए तालीम और तरक्की की भी बहुत शदीद जरूरत है। तो वो सारी चीजें में खत्म हो जाएंगे, मुसलमान पीछे रह जाएंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, सब कुछ सिखाएं, मगर निगरानी बहुत जरूरी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दीनदारी को नापने का पैमाना, तो एक पैमाना तो ये बताया कि गम के वक्त तकलीफ कितनी होती है। दूसरा एक पैमाना ये भी है कि आपको अपनी औलाद में दीनदार से ज्यादा मोहब्बत है या बेदीन से ज्यादा मोहब्बत है। आपकी बच्चियों में एक बच्ची मुकम्मल शरी पर्दा करती है और एक पर्दा नहीं करती, तो अगर आप दीनदार हैं तो जो पर्देदार है आपको उससे मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जो बेपर्दा है उससे मोहब्बत कम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे नफरत होनी चाहिए, औलाद है मोहब्बत तो दोनों से होगी। जो बापर्दा है उससे ज्यादा, जो नमाजी है उससे ज्यादा, बेनमाजी से कम। और ये कुरान मजीद में भी अल्लाह ने इसका जिक्र किया। अल्लाह ने अहले ईमान की जो सिफात बयान की हैं, सिफात, उनमें क्या सिफात फरमाया, उनकी ये दुआ होती है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, ए अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। इसकी तफसीर में सहाबा से और ताबईन से जो तफसीर मनकूल है वो क्या है कि उनको दीनदार बना ताकि उनकी नमाज तिलावत और दीनदारी को देखकर हमारी आंखें ठंडी हों, सुकून मिले कि माशाल्लाह सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बीवी भी सही सिम्त पे जा रही है, औलाद भी सही सिम्त पे जा रही है। जो बेदीन आदमी है उसको बीवी के पर्दे और नमाज रोजे में इतनी दिलचस्पी नहीं होती, कहती है तुम्हारा, वो कहता है तुम्हारा जाती अमल है, तुम पर्दा करो नहीं करो, नमाज पढ़ने पढ़ो नहीं पढ़ो, सदका तो खैरात करती हो करो, नहीं करना नहीं करो, मुझे रोटी टाइम पे चाहिए। समझ रहे हैं? मुझे क्या चाहिए? रोटी टाइम पे चाहिए, मेरे लिए जीनत इख्तियार करो। तो अपना गुलाम बना के तो रखेगा मगर अपनी बीवी को अल्लाह का गुलाम नहीं बनने देगा। और जो दीनदार आदमी है उसे अगर कभी ऐसी औरत मिल जाए जो इसकी खिदमत नहीं करती, खिदमत में कमजोर है लेकिन नमाज पाबंदी से पढ़ती है, पर्दा करती है, तो ये उसके उन अयूब को बर्दाश्त करेगा इसकी नमाज और पर्दे की बुनियाद पर। ये दीनदारी की अलामत है। कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ मामला दड़ा गड़बड़ है मगर अल्लाह के साथ तो सही है ना। अगरचे शोहर की इताअत करना भी अल्लाह ही का हुक्म है लेकिन एक वास्ते के साथ वास्ता आ जाता है दरमियान में, और अल्लाह की इबादत बराह रास्त अल्लाह की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बेनमाजी औरत के साथ गुजारा करूं, बेनमाजी औरत के साथ गुजारा करूं जबकि उसे तलाक देने में मेरे जिम्मे मेहर बहुत देना पड़े, तो फरमाया मैं मेहर का कर्जा बर्दाश्त कर लूंगा मगर उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं करूंगा, मखरूज होके मर जाऊं मैं। तो वो तो चूंकि सहाबा थे उनका तो मैयार और बुलंद था, वो तस्वर नहीं कर सकते थे कि बेनमाजी औरत के साथ हम कैसे गुजारा कर लें जो अल्लाह की इबादत नहीं करती। लेकिन उलमा कहते हैं इस जमाने में ये दुरुस्त नहीं है कि बेनमाजी है तो तलाक दे दें, क्योंकि सहाबा के दौर में और अब में फर्क है। لیکن اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر میں بیوی کی سب سے اچھی اور پہلی صفت کیا ہے؟ اس کا نمازی ہونا، اس کا نمازی ہونا. تو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اہل ایمان یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ پیسہ کما کما کے لا کے دے ہم خوش ہو جائیں، واہ بھائی واہ بیٹے نے تو بڑا کمال کر دیا. گا جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینکے گا. اب جس کو آگ میں پھینکے گا نا اس کی چیخو پکار بھی لوگ سنیں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سنو خبردار، جو باغ ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں باغ ہوگا. آج ہندوستان میں زبردستی بہت سے مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے، انڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں زبردستی. حالانکہ 800 سال مسلمانوں میں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، کبھی تاریخ میں کسی ایک ہندو کو بھی گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندو وہاں اکثریت میں ہیں. ورنہ 800 سال کوئی مضبوط حکومت کرے اور اس کا مذہب دنیا میں اس ملک میں نافذ نہ ہو، 100% یہ ممکن نہیں ہے. اگر حکومت زبردستی کرنا چاہتی بڑے آرام سے کر لیتی یہ کام. لیکن ہندو مسلمانوں کی 800 سالہ احسانات جو ہے نا ان کو فراموش کر رہے ہیں کہ 800 سال مسلمانوں نے ہم پر کیسے حکومت کی تھی. انگریز نے 100 سال حکومت کی اور ہندوستان کو چوس کے لے گیا، وہ کنگال کر دیا. اس انگریز کے تو آج بھی گنگا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ان کی زبان سے بھی محبت کرتے ہیں انگریزی سے. اور جو مسلمانوں کی، جو زیادہ تر مسلمانوں کی زبان ہے اردو، اس سے نفرت کر رہے ہیں. تو یہ عجیب عصبیت اور تعصب کی انتہا ہے یا نہیں کہ جو جس نے 100 سال حکومت کی تمہارا خون چوس کے لے گیا جو انگریز، ساری ہندوستان کی دولت لوٹ کے برطانیہ کی فیکٹریاں اس سے چلی ہیں، ہندو اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتے. اور جن مسلمانوں نے تم پہ 800 سال حکومت کی، محمد ابن قاسم جب ہندوستان آیا تو ایسا عدل و انصاف سے ہندوستان کو بھرا ہے کہ ہندو اس کی مورتیاں بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے. جو آج محمد بن قاسم کی تصویریں ملتی ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تصویریں 1200 سال سے ہندو بناتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی تصویر محفوظ رہ گئی. معبود سمجھتے تھے، بھگوان سمجھتے تھے اس کو. تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ مسلمان کمانڈروں نے ہندو عورت کو زندہ جلنے سے بچایا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے آبا و اجداد جو عراق سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، ان کی سوان حیات میں لکھا ہے کہ گھوڑے پر عراق سے سفر کر کے ہندوستان آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی. یہ سچا واقعہ ہے جو ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان کی سوان حیات میں. تو ایک عورت کے چیخنے کی آواز آئی تو بغداد میں چونکہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اسلامی حکومت کا، خلافت کا، تو یہ حضرات ہندوستان آ رہے تھے کہ یہاں کی مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہے، ان کے تحت رہیں گے ہم. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو عورت کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے، کسی عورت کے چیخنے کی. جب قریب گئے تو پتہ یہ چلا، انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھئی اس عورت کو یہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ چیخ رہی ہے، لیکن سب اس کو گھسیٹ رہے ہیں تو یہ چیخ کیوں رہی ہے اور یہ گھسیٹ کیوں رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ اس کا شوہر مر گیا ہے، اور ہندو مذہب میں جس عورت کا شوہر مر جائے اس عورت کو بھی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے، اسے جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں. یہ دو آدمی تھے اور وہ پورا مجمع، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ دو تھے اور وہ پورا مجمع. انہوں نے تلوار اٹھائی اور ایک ایک کو کاٹنا شروع کیا ہے، مارنا شروع کیا، اور اس عورت کو بچا کے لے گئے ہیں. ایسے ہمارے اکابر میں کئی واقعات ہیں جو ہندوستان کی تاریخ میں ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی ڈاکو تھا معاذ اللہ، جس نے ہندوستان کے مندر آ کے توڑے تھے. اگر وہ ڈاکو ہوتا، میدان جہاد میں کوئی کسی کی چیز توڑ دے جنگ کے دوران، اس کو دہشت گردی سے تعبیر نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں نے قبضہ کیا ہندوستان پر، پھر کتنے مندروں کو توڑا؟ اگر توڑا ہوتا تو آج ہزاروں مندر موجود ہوتے ہندوستان میں، ہزار ہزار سال پرانے مندر. یہ اس لیے موجود ہیں کہ مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی. ورنہ ایک محمود غزنوی ایک پٹھان آ کے جب تمہارے مندر توڑ سکتا تھا تو ان جب وہ پٹھان حکومت کرے گا تو تمہارے تو مندروں کی ایسی کی تیسی کر دے گا. وہ نہیں کی اس لیے کہ اس کا مذہب اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو ہندوستان کی تاریخ میں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک پٹھان محمود غزنوی آیا تھا اس نے یہ توڑ پھوڑ کر کے گیا تھا, مگر یہ نہیں بتایا جاتا کہ کتنے پٹھانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اور کیسا عدل و انصاف سے ہندوستان کو بھرا, یہاں کے خزانے کہیں منتقل نہیں کیے, سونے اور چاندی کے جو بڑے بڑے ذخائر تھے. ہندوستان کو جتنی ترقی مسلمانوں کے دور حکومت میں ہوئی ہے اتنی ترقی انگریز کے آنے کے بعد نہیں ہوئی. یہ انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں جو ترقی تھی ہم نے اس ترقی کو لوٹا ہے. ہندوستان کی ترقی کا سبب انگریز نہیں بنائے. لیکن ہندو محبت کس سے کرے گا؟ انگریز. زبان بھی ان کی, اور وہ جو ایک ادبی زبان تھی اتنی خوبصورت اردو زبان اس سے نفرت کر رہے ہیں. رسم الخط بھی تبدیل, اور پتہ نہیں اس میں کیسے کیسے الفاظ گھسڑ کے اس کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ جو ہے نا, یہ تو اسی عصبیت کا ایک نتیجہ کیا ہے کہ زبردستی وہاں مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے. تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں, جان کے خوف سے کلمہ کفر زبان سے نکالنا اس کی شریعت نے گنجائش دی ہے. اگر آپ کو ڈر ہے کہ گلا کاٹ دے گا تو آپ زبان سے کلمہ کفر جان بچانے کے لیے وقتی طور پر نکال سکتے ہیں. یہ میں ان مسلمانوں کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. لیکن عظیمت کیا ہے, اصل حکم کیا ہے کہ جان چلی جائے مگر انسان اپنے ایمان کو نہ چھوڑے. اجازت دی ہے کہ وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ لو, دل میں مومن رہو. تو وہاں جو ہندو زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں ان مسلمانوں تک اگر میری آواز پہنچتی ہے تو وہاں کے علماء بھی یقیناً بتا رہے ہوں گے انہیں مسئلہ. تو اصل تو یہی ہے کہ جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر نکالا جا سکتا ہے, دل میں ایمان ہو اطمینان ہو. لیکن عظیمت کیا ہے کہ زبان سے بھی کلمہ کفر نہ نکالا جائے. تو پھر کیا ہوگا, اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ نے جیسے ان لوگوں کو جن کا سورہ بروج میں ذکر ہے ان کے لیے جو آگ تھی اللہ نے اس کو جنت کا باغ بنا دیا, اللہ آپ کو ایمان پر ڈٹنے کی بنیاد پر بھی انشاءاللہ جنت کا باغ بنا دیں گے اس موت کو. اور یہ بات یاد رکھو, یہ ہمارے اسلاف تھے کہ دو آدمی آئے اور ایک عورت کو ظلم سے بچا کے لے گئے, چھڑا لیا, اس لیے کہ ان میں بہادری تھی. اسلام بہادری اور طاقت اور قوت اور شجاعت کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے جو ہندو کسی مسلمان کے پاس آئے اس کو زبردستی کافر بنانے کے لیے تو اس مسلمان کو چاہیے خود بھی شہادت کے لیے تیار رہے, مگر اس سے پہلے 25-30 کو لٹا دے. وہ ہندو بزدل قوم ہے, جب تک ان کے 38-40 لیٹیں گے نہیں زمین پہ تو ان کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عظیمت یہی ہے کہ جب ہر ہندو کسی اور معصوم ہندو پہ نہیں کہیں لٹا دیں, جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں, کوئی کچھ کر نہیں رہا, خام خواہ میں جا کے چورے گھوپنا شروع کر دی, یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ہندو کسی مسلم کے پاس آتا ہے یا کوئی جتھا آتا ہے کسی مسلم کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے تو اس مسلمان کو کیا چاہیے؟ عظیمت یہ ہے, ثواب اسی میں ہے کہ بھائی کٹ جاؤ اور کاٹ دو. جتنوں کو آپ کاٹ سکتے ہیں پہلے سے کاٹ دیں, اور جس گاؤں میں خطرہ ہو کہ یہاں ہندو حملہ کریں گے اس گاؤں کے لوگوں کو تہجد پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اسلحہ رکھنے کا ثواب ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلحہ رکھیں کچھ نہیں ہے, ڈنڈے ہی رکھ لیں, بولے مروں گا لیکن جتنوں کا سر پھاڑ سکا نا وہ پھاڑوں گا ضرور میں. تو بھائی اس طرح سے زندگی بچے گی, ایسے نہیں ہوگا کہ بیٹھے ہوئے اور وہ گلے کاٹ کاٹ کے جا رہے اور آپ ہو رہے ہیں, تو پھر پورے ہندوستان کو غیر مسلم بنا دیں گے یہ لوگ. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر مضبوطی نصیب فرمائے. تو میں بتا رہا تھا, بس بات ختم کرتا ہوں, کہ جو تھرمامیٹر ہے نا معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسے دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, عبادت گزار کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, دنیا دار کو دیکھ کر. اگر کسی کی عبادت دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اگرچہ آپ خود عبادت گزار نہیں ہیں لیکن یہ دل کے درست ہونے کی علامت ہے. اور خود کتنے بھی عبادت گزار ہیں مگر دوسرے کی عبادت دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو رہی, صرف پیسے دیکھ کے ٹھنڈی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے دینداری کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, دینداری آپ کے دل کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی معنی میں دیندار بنائے, حقیقی معنی میں متقی اور تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ये जो मैंने बात की है कि वालदैन को जो औलाद में जो दीनदार होता है आमतौर पे मुशाहिदा उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, बेदीन से ज्यादा होती है जो कमा के खिला रहा है। तो इसकी एक वजह ये भी देखने में आई है कि जो दीनदार औलाद होती है उसके अखलाक अच्छे नहीं होते, ये मुशाहिदा, ये चीज आती है मुशाहिदे में। हालांकि जो नमाजी है जो दीनदार है उसको वालदैन के साथ बर्ताव दूसरे से ज्यादा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वो नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि अल्लाह ने हुक्म दिया, तो अल्लाह ने वालदैन के साथ भी हुस्ने सलूक का उतनी ही ताकीद के साथ हुक्म दिया है। वाला तकुल लहुमा उफ्फिन, इनके सामने उफ भी मत करो। उलमा ने लिखा है कि उफ से कम कोई कलिमा नहीं है, अगर होता तो अल्लाह उसका भी जिक्र करते। यानी सबसे हल्का कलमा जिसमें सामने वाले को तकलीफ होती है वो सबसे हल्का कलमा लफ्ज उफ है, कि उफ कह देना। फरमाइए मिसाल है, वरना उफ से कम दर्जे का कोई कलमा होता तो अल्लाह उसका भी तस्किरा कर देते। इसकी जैसे मिसाल है कि लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, के लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर है। तो उलमा ने हिकमत लिखी है कि अरबी में सबसे बड़ा लफ्ज हजार का है, अदद, हजार से ऊंचा कोई लफ्ज नहीं है अरबी में। लाख को जो बोलते हैं ना अल्फ अल्फिन कहते हैं, नहीं हजार जरब हजार, इसको लाख कहते हैं। तो अल्फ से बड़ा, हजार से बड़ा अरबी जबान में कोई अदद है नहीं, तो इसलिए अल्लाह ने लैलतुल कद्र को कहा कि हजार महीनों से बेहतर। तो कहते हैं अगर हजार से ऊंचा कोई लफ्ज होता तो शायद अल्लाह ताला वो बयान कर देते। तो ऐसे ही यहां पर के वालदैन को उफ कहने की इजाजत नहीं है, तो उफ का लफ्ज अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया कि उफ से ज्यादा हल्का लाइट लफ्ज कोई नहीं है, यानी इससे भी कोई मजीद जो मिसाल दी जाती, इसलिए इसका जिक्र किया कि इतना सा मामूली लफ्ज जो उनको तकलीफ पहुंचाए उसकी भी इजाजत नहीं है। तो जो लोग दीनदार हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं, उनको वालदैन के मामले में बहुत हसास होना चाहिए। खास तौर पे बास जगहों पर, ये हर जगह नहीं, बास जगहों पे देखा है कि किसी पीर मुर्शिद से बैत हो जाते हैं तो उसकी खिदमत में इतने मशगूल होते हैं कि वालदैन की खिदमत को भूल जाते हैं फिर वो। तो ये भी गलत है, उसकी भी खिदमत करनी चाहिए लेकिन साथ साथ वालदैन की भी करनी चाहिए। वालदैन चाहे फासिक हों, फाजिर हों, पीर मुर्शिद नेक परहेजगार हों, तो भी शरीयत फासिक वालदैन को पीर मुर्शिद पे तरजीह देती है, दीनी मामलात में नहीं, दुनियावी चीजों में। दीन में तो मसाइल हलाल और हराम के वो तो उलमा से ही पूछे जाएंगे, लेकिन फरमाबरदारी में, मुबाह चीजों में, जायज चीजों में किसकी इत्तिबा की जाएगी? वालदैन की, क्योंकि उन्होंने जना है, वो जिंदगी का वजूद का सबब बने, वो ना होते आप ना होते। मां ने तकलीफें उठाई हैं, कोई उस्ताज, कोई पीर और मुर्शिद वो तकलीफें नहीं उठाता जो मां ने उठाई होती हैं। और बाप से इंसान को खानदान मिलता है, नाम मिलता है, कौम मिलती है, ये सारी इज्जतें इंसान को बाप से मिलती हैं। तो इसलिए शरीयत में वालदैन का खास तौर पे बहुत ज्यादा ख्याल है। फिर दीनदार आदमी को अपने भाई बहनों का भी ख्याल करना चाहिए। कभी कभार उनको, हमारे हजरत इतने सख्त मिजाज थे, सब में मशहूर हैं, लेकिन पंजाब का सफर करते थे, पंजाब का सफर करते थे सिर्फ रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए। तो रिश्तेदार परेशान होते थे कि आप अपनी मसरूफियों से फारे होकर हमसे सिर्फ मिलने आए हैं, इतने लंबे लंबे सफर कर रहे हैं, फैसलाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ। तो फरमाते थे बस सिर्फ मुलाकात मकसद है और कुछ नहीं, कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रिश्तेदारों से जोड़ के रखो। तो दीनदार आदमी को इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। वो अजीब सा सूखा सा बन जाता है जो नमाजी परहेजगार बनता है ना, खुशका खुशका हो जाता है वो, अजीब सा, बस हर चीज में हलाल है, ये हराम है, ये नाजायज है, ये जायज है, वो फतवे घर में जाके फतवे देता रहेगा। बहन पर्दा नहीं करती, तू जहन्नम में जाएगी सीधा। तो उसने कभी भाई के मुंह से कोई ऐसा जुमला सुना ही नहीं जो फूल निकल रहे हो, हमेशा जहन्नम के फतवे और बेगैरती के ताने, ये चीजें सुनी है। तो ये जमाना नहीं है भाई। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम दी है, दीन का एक हिस्सा है। आप जबरदस्ती अपने मातहतों पर तो कर सकते हैं, जो मातहत नहीं है वो तो कैसे उन पर जबरदस्ती कर सकते हैं। इसलिए अखलाक को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अलीम बेग साहब, उनकी तबीयत खराब है, उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।